Thank you, Dr. Pereira. The next speaker is Dr. Vasudevya.
Namostu Ramaya Lakshmaya Devyaita Prasthiyana Katmajaya Namostu Rudraendraya Manilebhyo Namostu Kangarakamarantayadha Adhyaksh Mahogay Mere Sakhi Vaktavu Devi Aur Sajjano Vishay Apne Aapne Bada Jatil Hai Aur Main Samajhta Hoon Isko Mool Roop Mein Samajh Lena Avashyak Hai जहां तक मूल प्रश्न है आज के विचार का कि क्या धर्म अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य में बाधक है, इसका उत्तर मैं निषेध के रूप में दूंगा कि वह बाधक नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरे पूर्व वक्ता, जैसे मैं चाहता था कि मैं अन्य वक्ताओं से भी बाद में बोलता, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जो क्रम रखा वो भी स्वीकार है, बाद में हम लोग कुछ डिस्कशन और करेंगे ही। मेरे पूर्व वक्ता ने जिस रूप में बात रखी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उससे सहमत नहीं। मैं सनातन वैदिक धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जहां तक हमारे धर्म का प्रश्न है, मैं समझता हूं किसी भी धर्म, उन्होंने एक बात आपके सामने रखी कि किसी भी धर्म के फंडामेंटलिस्ट माने अतिरिक्त, शायद उसके लिए आपके हिंदी में शब्द चल रहा है, वो ये मानते हैं कि धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी के साथ हम डिस्कशन नहीं कर सकते और उस पर कोई विचार नहीं, डायलॉग नहीं कर सकते और विचार नहीं कर सकते। यहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है, ये बिल्कुल सही है कि हम ये मानते हैं कि धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु उसके बाद हम ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम किसी के साथ विचार नहीं कर सकते या किसी को हमसे अलग विचार रखने नहीं दे सकते। दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ तक समझता हूँ सारी समस्याएं तब से उत्पन्न हुई जब से कुछ नवीन धर्म वालों ने प्राचीन धर्म वालों को कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न शुरू किया। जब तक ये प्रयत्न नहीं होते थे, तब तक इस प्रकार की समस्याएं कभी उपस्थित नहीं हुई थी। आप देखेंगे जितने प्राचीन धर्म हैं, खासकर जैसे सनातन धर्म, वो किसी अन्य को अपने में कभी देने का प्रयत्न नहीं करता। हम लोग कन्वर्शन के दोनों प्रकार से विरोधी हैं। किसी हिंदू को यदि कोई मुसलमान या ईसाई बनाना चाहे तो भी हमें कष्ट होता है, पर किसी मुसलमान या ईसाई को कोई हिंदू बनाना चाहे तो उसे भी हम गलत समझते हैं। और हम गलत समझते हैं माने ये हमारा वैयक्तिक विचार नहीं है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों का सिद्धांत यह है कि हमारा अपना कोई विचार नहीं है। जो शास्त्रों का विचार है वो हमारा विचार है। शास्त्रों को समझने में हमारी कहीं भूल हो रही हो तो उसे सुधारने के लिए हम किसी भी क्षण तैयार हैं। और सच तो यह है कि हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा यह रही है कि विरोधी पक्ष को हमेशा हमने आमंत्रित किया है, उनकी ओर से पहले विचार किया है। हमारे यहाँ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की एक प्रक्रिया है। मैंने जानबूझकर हिंदी को इसलिए चुना कि बहुत से ऐसी संज्ञाएं आएंगी, ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगी कि जिनका अंग्रेजी अनुवाद मैं समझता हूँ संभव नहीं है। बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया है, लेकिन इन संस्कृत शब्दों का बिल्कुल सही अनुवाद मैं समझता हूँ कि आज की भाषाओं में हो नहीं सकता। उसके निकट आप जा सकते हैं, पर एकदम सही अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द का अर्थ केवल शब्दकोश में जो मिलता है, केवल डिक्शनरी मीनिंग शब्द का अर्थ नहीं होता। उस शब्द के साथ उसकी बहुत सी छायाएं, उसके बहुत से अर्थाभास के साथ में लग जाते हैं, उन्हें मिलाकर शब्द का अर्थ होता है। सच यह है कि धर्म शब्द का सही अर्थ रिलीजन शब्द नहीं देता, पर हमें व्यवहार करना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि सनातन धर्म का ये परंपरा रही है कि हम पहले पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष देते हैं। शंकराचार्य ने यहाँ नास्तिकवाद का समर्थन करना शुरू किया है, वहाँ इतना जबरदस्त समर्थन किया है कि उनके बाद के बहुत से नास्तिक आचार्यों ने ये स्वीकार किया है कि हमारे नास्तिक आचार्यों ने भी हमारे पक्ष का इतना प्रबल समर्थन नहीं किया जितना शंकराचार्य ने किया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूर्व पक्ष जितना बलवान होगा हमारा उत्तर पक्ष उतना ही बलवान होगा। यदि पूर्व पक्ष दुर्बल होगा, कमजोर होगा, तो उत्तर पक्ष भी कमजोर रहेगा। इसलिए पूर्व पक्ष बहुत अच्छा बने ये हमारा प्रयत्न रहता है, उसके बाद हम उसका उत्तर देना चाहते हैं। इसलिए हम अपने धर्म के भीतर या धर्म के बाहर और किसी से वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो प्रश्न ही नहीं है। तीसरी बात यह है जो वास्तव में पहली बात है कि क्या धर्म में परिवर्तन किया जा सकता है। हमारा उत्तर यह है कि धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी धर्म है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सब ये मानते हैं कि धर्म के आचरण का फल परलोक में मिलता है। इस लोक में हमें जो सुख या दुख मिल रहा है वो इस लोक के किए हुए कर्मों का ही फल है, ऐसा नहीं है। अधिकांश रूप में जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, दैव कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है और इस जन्म में किए हुए अधिकांश पुण्य और पाप का फल हमें परलोक में मिलता है। हमारे जो साथी पुनर्जन्म नहीं मानते, वे भी इतना तो मानते हैं कि मरने के बाद भी एंड नहीं हो जाता, मरने के बाद भी आत्माएं कहीं कहीं विद्यमान रहती हैं, और कोई एक दिन ऐसा आएगा जिसे आप प्रलय का दिन या प्रलय की रात्रि कह लीजिए या कोई डे ऑफ जजमेंट कह लीजिए, ऐसा कोई एक दिन आएगा जिस दिन ईश्वर आकाश से उतरेगा और उतर कर उन सब जीवों को फिर से पूछेगा कि तुमने क्या क्या करनी चाहिए है और उनका ये फल तुम भोग लो। ये अलग बात है कि वो ऐसा मानते हैं कि हमें एकमात्र यही जन्म मिला हुआ है, इसमें जो कर्म हम कर रहे अच्छे या बुरे उनके फलस्वरूप हमको अच्छा या बुरा फल मिल जाएगा, हम अनंत काल के लिए स्वर्ग या नरक में भेज दिए जाएंगे, ये वे मानते होंगे। हम ऐसा नहीं मानते, अनेक जन्म मानते हैं, पर एक बात सब में समान है, वो ये कि जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं उनका जो फल हमें यहाँ मिल गया वो अंतिम फल नहीं है, उसके बाद भी कोई फल और मिलना बाकी है। माने हम जो कुछ कर्म यहाँ कर रहे हैं उसके लिए वी आर आंसरेबल टू समबडी एल्स, किसी और को हमें कभी जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। ये अगर कोई नहीं मानता तो धर्म को नहीं मानता, या आप निश्चित माफ लीजिए। वैसे आस्तिक और नास्तिक की परिभाषाएं भी अनेक हुई है, लेकिन मैं इस समय आस्तिक और नास्तिक की यही परिभाषा करना चाहता हूँ, और जो हमारे शास्त्रों से बहुत अंशों में सम्मत भी है, कि जो परलोक को माने, परलोक का पुनर्जन्म यहाँ आप मत करिए, हम व्यापक रूप से मरने के बाद कुछ और होता है इतना जो माने, ईश्वर को भी मानना जरूरी नहीं है। हमारे वैदिक संप्रदाय में भी बहुत से दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को बहुत उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं और कर्म फल को वे भी मानते हैं। तो मरने यहाँ किए हुए कर्मों का हमें मरने के बाद भी कहीं उत्तर देना पड़ेगा, इतना जो मानता है वो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे यहूदी है, कुछ भी है, वो धार्मिक या आस्तिक है, ऐसा मानने के लिए हम तैयार हैं। और इतना मानने के बाद आप तो आप विचार कीजिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उनका क्या फल होगा, ये निश्चय हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप डेमोक्रेसी की बात कर रही है, ठीक है, आप मेजोरिटी के आधार पर कोई निर्णय कर लीजिए, वो कानून बना दीजिए, लेकिन अगर फल देने वाला कोई और है तो उसने हमारे बनाए हुए कानून को या हमारे बनाए हुए संशोधनों को, हमारे बनाए हुए अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया है कि नहीं किया है, ये जब तक निश्चित नहीं हो जाता तब तक हम इन नए संशोधनों को लागू कैसे कर सकते हैं। आप इस पर सावधानी से ध्यान दीजिएगा, संसार में कोई राजा ऐसा नहीं होता जो ठीक है। वैसे देखिए डेमोक्रेसी पर भी बहुत से विवाद विद्वानों में चल रहे हैं, डेमोक्रेसी एक माह आज विश्व में बहुत व्यापक हो गई है, अलग बात है, लेकिन ये अत्यंत निर्दोष प्रणाली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आज बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि सब प्रणालियों में सबसे अधिक निर्दोष ये है, ऐसा लोग मान रहे हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ा मौलिक आक्षेप ये आता है कि जिस पर शासन करना है उसी के द्वारा शासन होना है, ये मूलतः एक गलत बात है। परिणाम ये होता है कि जिस पर आप शासन करना चाहते हैं उसकी इच्छा के बाहर आप नहीं जा सकते। आप बहुमत की बात कर लीजिए, लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हजारों और लाखों और करोड़ों व्यक्ति जो वोट देने के लिए जाते हैं वे कितने हर विषय के जानकार हो सकते हैं, उनके वोट का क्या मूल्य है। एक पाश्चात्य विद्वान ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि आई कैन टॉलरेट डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज वन जीनियस इज इक्वल टू वन फूल, बट इट बिकम्स अनटॉलरेबल व्हेन टू फूल्स आर मोर देन वन जीनियस। एक मूर्ख और एक बुद्धिमान बराबर है, वहां तक फिर भी डेमोक्रेसी को मैं सहन कर लूंगा, लेकिन दो मूर्ख बनकर एक विद्वान को उठा के फेंक दें जब हम क्या करेंगे। तो आज परिस्थिति हो रही है लोक में, इसका हम फल भोग रहे हैं। हो सकता है आपको ये अगर लग रहा है कि इससे अच्छी और कोई शासन प्रणाली नहीं तो आप उसे चलाइए, मैं शासन प्रणाली के लिए डेमोक्रेसी को बदल देने की वकालत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, परंतु धर्म के क्षेत्र में आप डेमोक्रेसी कैसे ला सकते हैं। कौन सा राजा ये कहेगा कि अपराधियों से पूछ लो तुम्हारा कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है, तुम जो कहो वो फल हम दे दें, ये कैसे कोई राजा करेगा। इसलिए हर राजा का अपना एक कानून होता है और उस कानून को पालन कराना वो चाहता है। अगर ईश्वर में कुछ सामर्थ्य है और ईश्वर सबसे अधिक सामर्थ्यशाली है, ये सभी धर्म मानते हैं, तो ईश्वर अपने कानून में आपके द्वारा किए हुए संशोधनों को स्वीकार करता है कि नहीं, ये पहले जब तक हमें पता न चल जाए तब तक हम परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर सकते। अन्य धर्म वालों को अपने धर्म, मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक आप सब धर्म वाले अपना अपना अपने अपने धर्मों का पालन करते रहें तब तक ये समस्याएं खड़ी नहीं होती। समस्याएं तब खड़ी होती है सनातन वैदिक धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, जितने पुराने धर्म हैं वो कभी दूसरे को अपने में नहीं लेते। इसलिए ये लोग जहाँ कहीं हैं वहाँ अत्यंत निरापद हैं। किसी पारसियों से किसी समाज को आज तक कोई खतरा नहीं हुआ, सनातनियों से किसी समाज को आज तक कोई खतरा नहीं हुआ। अब परिस्थिति यह है कि जब दूसरों को अपने में लेने की बात आएगी तो जबरदस्ती चलेगी। मैं अपने प्रश्न पर आ जाता हूँ क्योंकि शायद 3-4 मिनट मेरे पास अवशेष है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन वैदिक धर्म का इतिहास आप देख लीजिए, उसने कभी भी अन्य संप्रदाय वालों को या उस संप्रदाय के अंदर वालों को वाणी स्वातंत्र या विचार स्वातंत्र में बाधा नहीं डाली गई है। वैसे हमारे इतिहास में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। गीता स्वयं बतलाती है, अन्य प्रवी है। जहाँ तक दैवी सृष्टि का प्रश्न है ये बाधा कभी नहीं आई। राम और रावण का संग्राम आप रामायण का उदाहरण देख लीजिए। भगवान राम के सामने जब कभी ये प्रश्न आए कि अब क्या किया जाए, अगर धर्मशास्त्र उसका उत्तर देता है तो और किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। पर धर्मशास्त्र अगर उसका उत्तर नहीं देता और हमें विचार करना है, अथवा धर्मशास्त्र का यहाँ क्या उत्तर है इसका हमें विचार करना है, वहाँ भगवान राम के यहाँ कभी भी मतभेदों को दबाया नहीं गया। मैं इसके दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है जिस समय महाराज दशरथ ने भगवान राम को वनवास का आदेश दिया, लक्ष्मण जी इसके बड़े विरुद्ध थे, उन्होंने भगवान राम से स्पष्ट शब्दों में कहा कि महाराज दशरथ इस समय अपनी पत्नी के वश में आए हुए हैं, ये सोच विचार करके निर्णय नहीं कर रहे हैं, उनका निर्णय धर्म सम्मत नहीं है, इसलिए आप इसे स्वीकार मत कीजिए। भगवान राम ने नहीं कहा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, राजा कह रहे हैं क्या मैं कर रहा हूँ तुमको प्रभु, ये उन्होंने नहीं कहा। अध्याय के अध्याय वाल्मीकि रामायण में है जहाँ उन्होंने लक्ष्मण जी को तर्कों से, युक्तियों से और शास्त्र के प्रमाणों से ये समझाया है कि नहीं, महाराज दशरथ भले ही पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर ये कर रहे हों पर अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए। अगर वहाँ ये होता कि अभिव्यक्ति के स्वातंत्र को दबा दिया गया होता तो भगवान राम को इतने तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रसंग यह है जब विभीषण जी भगवान राम की शरण में आते हैं, वहाँ सारे मंत्रिमंडल की एक राय थी कि इस समय विभीषण को अपने यहाँ शरण देना खतरनाक है, ये शत्रु का स्पाई है, शत्रु का गुप्तचर है। अब तक क्यों नहीं, अगर ये इतना धार्मिक था तो इतने महीने बीत गए, अब तक कहाँ सोया हुआ था। लेकिन सब कोष अभिव्यक्ति का स्वातंत्र था, भले ही भगवान राम ने अपना निर्णय किया पर उन्होंने अपना निर्णय किया उन्हें सबको बताकर, सबको समझाकर, सबकी सहमति से। दूसरा प्रसंग मैं महाभारत का लूंगा। महाभारत में भी विभीषण के यहाँ पूरा अभिव्यक्ति का स्वातंत्र था। दुर्योधन के यहाँ द्रौपदी के तीर्थन के समय जब अकेला विकर्ण एक व्यक्ति सौ पुत्र थे धृतराष्ट्र के, तो उसमें से एक व्यक्ति कम से कम धर्म की बात कहने के लिए खड़ा हो गया विदुर के बाद, उस समय कर्ण ने उसे दबा दिया और लोगों ने दबा दिया। तो आसुरी संपदा का जहाँ साम्राज्य रहता है वहाँ किसी को स्वतंत्रता नहीं रहती, और दैवी संपदा का जहाँ प्राबल्य रहता है वहाँ सबको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है। अंतिम बात मैं कहूँगा कि यदि सनातन वैदिक धर्म में अभिव्यक्ति का स्वातंत्र न होता तो इस देश में वैदिक धर्म के विरुद्ध या उनसे भिन्न और बहुत से धर्म कभी पैदा न हो पाते। जैन और बौद्ध दोनों धर्म वेदों की घोर निंदा करते हैं, जिन वेदों को हम अनादि और अपौरुषेय मानते हैं उन वेदों के लिए उन्होंने गांधी उत्तर का प्रयोग किया है, प्रयोग वेद से करतारो धूर्त भंड ऐसा चलाहा, वेद के रचयिता धूर्त है, भान है और राक्षस है, उनको भी हमने कभी शारीरिक दंड नहीं दिया। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया, आप पश्चिम की बात करते रहिए, भारतवर्ष में आप एक दो उदाहरण ऐसा दीजिए जहाँ किसी वैज्ञानिक को, किसी विचारक को, क्योंकि उसके विचार राज्य के या सरकार के विरुद्ध है इसलिए उसको कभी जेल में डाला गया हो या सताया गया हो। सारे जिन लोगों ने वेदों को गालियां दी, जिन्होंने भगवान राम को गालियां दी, जिन्होंने भगवान के राम को गाली देने, राम पर झूठा आक्षेप करने वाले एक व्यक्ति के आधार पर उसको जेल में नहीं डाल दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में, फिर भगवान राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी का परित्याग कर दिया। आप उदाहरण हमारा इतिहास पूरा देख लीजिए, हमारे देश में वैचारिक मतभेद के आधार पर हमारे यहाँ किसी कन्फ्यूशियस को जहर नहीं दिया गया, किसी गरीबी को जेल नहीं दिया गया, वैचारिक विरोध के आधार पर। अगर शारीरिक दंड देने का कोई इतिहास में हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है तो पहला इतिहास गांधी हत्या का है, और उसकी जिम्मेदारी पाश्चात्य शिक्षा की है, हमारी संस्कृति की नहीं। इस पर बहुत कुछ कहना मुझे ठीक है, पर मैं समझता हूँ आगे के डिस्कशन में कहूंगा, मैं समझता हूँ एक शायद और है मेरे पास, मैं इतना ही कह लूंगा कि हमें पाश्चात्यों ने, अंग्रेजों ने इतने गलत इतिहास पढ़ाए हैं कि जिसके कारण आज हमारा नवयुवक उस इतिहास को पढ़ करके पथभ्रष्ट हो रहा है। आर्य भारत में बाहर से आए, आर्य और द्रविड़ ये दो अलग जातियां थी, आर्य कोई जाति थी, यही मूल कह गलत है, आर्य भारत में बाहर से आए यही गलत है। इस पर मैं अभी किसने कह नहीं सकता, और इतनी गलत बात में कहने का परिणाम आगे हुआ कि भारत में उत्तर और दक्षिण का संघर्ष हो रहा है, नहीं तो भारत में उत्तर दक्षिण आर्य और द्रविड़ का संघर्ष भी कभी नहीं था। और जैन और बौद्ध दोनों धर्म इस देश में हजारों वर्षों से पनपते चले आए, हमने कभी अभिव्यक्ति को रोका नहीं। उसके बाद भी मुसलमान या ईसाई हमारे देश में आए, जब तक उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए तब तक हमने उनका कभी प्रतिरोध नहीं किया। मैं समझता हूँ इनका बहुत से प्रश्न होते हैं और मैं चाहता हूँ कि प्रश्न हो वे हम लोग आगे से विचार में रखने।